10-15-12 मिनट है हमारे पास। अगर पहले लाजमी की वजह से या गाइडेंस ना होने की वजह से हमारी नमाज में पर्दा वजू वाजबात नमाज जैसे गलती हुई है तो क्या वो तमाम नमाजों की कज़ा बजाकारी लानी पड़ेगी? लाइल्मी जो है वो हमारे कोई वो जवाब नहीं है इस्लाम के अंदर ना, नॉट नोइंग द लॉ इज नॉट क्या यहाँ पर भी कोई है कि एक इग्नोरेंस इज नॉट क्या है इग्नोरेंस ऑन द लॉ इज नो एक्सक्यूज। तो माना ये बनता है कि अगर आपको नहीं पता था तो एक्सक्यूज नहीं बनती, जब आपको दोबारा वो नमाजें जो है वो पढ़नी पड़ेंगी। एक बंदा था वो दुनिया से चला गया, वो एक थोड़ा सा आपको डराया इतना है, थोड़ा सा बहुत डराया, मैं खुद भी डरा हूँ, ये सब अपने लिए डराता हूँ, वो आप बीच में डर जाते हो अलग। वो शख्स था वो चला गया इस दुनिया से ना, तो अपने बच्चे को आके ख्वाब में कहता है कि मेरे बेटे 40 साल की कजा वजू जो है ना मेरे करवा दे। बेटा कहता है बाप मैंने ये तो सुना था कि नमाजें कजा होती हैं और वो पढ़वा दे, लेकिन ये क्या कि आप मुझे कह रहे हैं कि 40 साल की वजू कजा जो है वो मेरे को करवा दे। तो बाप कहता है देख नमाजें तो मैंने पढ़ ली, मुझे ये नहीं तब पता कि वजू भी करना होता है। नमाजें तो मैंने सारी पढ़ ली लेकिन मुझे नहीं तब पता कि वजू भी करना होता था नमाज से पहले, तो ये है कि करना पड़ेगा जी। सही, अगर मुस्लिम लड़का ईसाई लड़की से शादी करता है और वो लड़की मुसलमान होने के लिए तैयार नहीं है, क्या ये निकाह जायज है? निकाह मुसलमान और ईसाई अहले किताब के अंदर परमानेंट मैरिज जो है वो अलाउड नहीं है, तो अगर वो शिया वाले से भी पढ़ी जाए सुनिया वाले से पढ़ी जाए वो एक यानी वो एक उनके अंदर भी अब डिफरेंट फिका है, लेकिन हमारे मजहब के अंदर एक अहले किताब हो या काफिल हो उसकी मुसलमान के साथ परमानेंट शादी नहीं हो सकती, यानी ईसाई लड़का हो या लड़की हो वो शादी नहीं कर सकता। जी टेम्प्रेरी मैरिज के जो है वह काम जो है वो परमानेंट मैरिज से थोड़े से इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ है, अगर आप चाहेंगे तो हम वन ऑन वन जो है वो आपसे बात कर लेंगे। अब किताब के साथ परमानेंट मैरिज अलाउड नहीं है। अब और शादी में शिरकत जायज है? नहीं, शर्त शादी है ही, डेफिनेशन शादी नहीं है। मतलब हमें एक किसी ने हमें फोन किया कहते जी के हमारे बेटे ने जो है वो एक हिंदू के साथ शादी कर ली, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है वो निकाह शिया करवाया। अच्छा, कहते हैं कि अब मसला ये हो रहा है मौलाना साहब कि उस औरत को जो है ना हमने कह दिया कि तुम मुसलमान हो जाओ, अगर नहीं होती तो तुम्हें तलाक दे देंगे, तो अब आप हमें बताएं कि हम क्या करें। तो मैंने उनसे कहा कि आप साहब पहली बात तो ये कि जो निकाह हुआ है वो शिया बिशक जिस मर्जी मसन आयतुल्लाह बाजर भी आके पढ़ा दें उस निकाह को वो निकाह नहीं होता। सही, जब निकाह नहीं हुआ तो तलाक भी नहीं होगी। तो तीसरी बात ला इकराह फी दीन, आप किसी को बाय फोर्स दीन के अंदर नहीं ला सकते। ये कहना कि अब हम आपको तलाक दे देंगे अगर आप मुसलमान नहीं हुए तो ये भी गलत है दीन। सही, तो ये तो अव्वल तो शादी नहीं है, तो इसके अंदर तो जाहिर शादी नहीं है तो आपने जाके क्या करना है? खाने के ऊपर खाना खाना चाहते हैं तो वहां पे चले जाए। अगर कोई शख्स ऐसा है जिसको इतना भी नहीं पता कि ईसाई और मुसलमान जो है वो परमानेंट मैरिज नहीं कर सकते तो हो सकता है खाना भी क्या मुश्तबे हो उसमें हराम हो, यानी इमाम की दुआ है इमाम जवान सत्तर کہ ہمارے شکم کو، ہمارے پیٹ کو حرام سے اور اس کھانے سے جس میں شبہ ہو اس سے بچانا. تو جب آپ کو شبہ ہے کہ ہو سکتا ہے کھانا بھی جو ہے وہ حرام ہو، تو پھر وہاں پہ نہ جائیں. اب اگر وہ قریبی رشتے دار ہیں تو آپ کو صرف یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کس کی ناراضگی آپ نے مول لینی ہے. آپ نے اپنے قریبی رشتے دار کی ناراضگی مول لینی ہے یا آپ نے خدا کی ناراضگی مول لینی ہے، یہ چوائس آپ کی اپنی ہے. اگر تو قریبی رشتے دار کی ناراضگی مول نہیں لینی اور آپ سے جانا چاہتے ہیں، بسم اللہ فبہا. اگر آپ نہ جائیں اور خدا آپ سے خوشنود ہو جائے اور آپ کے رشتے دار ناراض ہو جائیں، تو یہ بھی فبہا، چوائس آپ کی ہے. اور اگر خدا کو ناراض کرنے اس طرح سے، تو پھر اپنے کلمے میں دوبارہ ذرا نظر ثانی کریں گے. جو آپ نے کہا نا کلمہ پڑھا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس میں ذرا نظر ثانی کریں، ہو سکتا ہے وہاں پہ کہیں غلطی کر دی ہو آپ. یہ بھی ہو گیا. ایک صلوات پڑھ دیں.
اللہم صل علی
چھوٹی بہن یا چھوٹے بھائی نے جو ہے وہ رنگین پینسلز کے ساتھ لکھا ہے واٹ ہیپنز ان جنہ. اب ظاہر اس نے اتنا جہنم کا سنا تو اس نے پوچھنا ہے نا کہ پھر جنت میں کیا ہوتا ہے. بیلنس ہونا چاہیے. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاں پہ بھی قرآن کے اندر جہنم کا لفظ آیا نا، وہاں پہ جنت کا بھی تذکرہ. جہاں پہ جہنم کا تذکرہ ہے وہاں پہ جنت کا بھی تذکرہ، تاکہ انسان جو ہے وہ بیلنس رہے نا. اصل میں ہمارے ساتھ یہ ہوگا کہ ہم اتنے امبیلنس ہوگی نا امید کے حوالے سے کہ ہمیں جہنم بھی نہیں ڈراتا نا، تو ہمیں جہنم کو بھی میگنیفائی کر کے آپ کو ڈرانا پڑتا ہے کہ کہیں پہ آپ بیلنس میں آ جائیں. مشکل ہمارے ساتھ یہ ہو گئی ہے. البتہ جنت کے اندر ان ہیون you will have anything and everything that you will desire. You will have every and any power that you wish to have. You will be able to feel any pleasure that you want or could feel. You would be able to know and love Allah subhanahu wa ta'ala on the higher levels of heaven, as close to Him as possible, that you will be able to feel His love. It is complete bliss. There is no worry, there is no depression, there is no stress, there is no limitations. Limitations compared to this world, there are none. You will have a place in heaven which is 6 times the space of this whole earth. Meaning your property in heaven would be 6 times bigger than this whole earth. And this is on the lower side. This is on مثلاً یو نو ویئر دی گیٹوز آر ان ہیون. دس از دا ڈسکرپشن آف دا گیٹوز. وین یو گو ہائر اینڈ ابو 6 times دا اسپیس آف ارتھ از نتھنگ. یو ول گیٹ ٹو دا پوائنٹ ویئر یو ول بی ایبل ٹو سی بی رائٹ. یو ول سے بی اینڈ اٹ ول بیکم. یو جسٹ ہیو ٹو تھنک آف اٹ اینڈ اٹ ول اپیئر وٹ ایور دیٹ یو وانٹ ٹو تھنک آف. یو ول نیور ڈائی. There will be no death. Death meaning transfer. Like you will not be transferred from heaven to hell. You over here we are going to be transferred from this dunya to heaven or hell. But once you are transferred into heaven, there is no transfer back to anywhere. But some cases for people in hell, they will be able to get transferred into heaven. But from heaven you don't get transferred anywhere. You will live forever, you will be young. You would be, you know, strong and young. There will be no old people in heaven. Thank God. There will be no old people in heaven. Well, it depends. Like, if whatever is in your mind, this is what you want to watch, okay, fine. But a person who really will go to heaven, thinking about Spider-Man, will be in the ghettos of heaven. They will not be in any higher place. They will be in the ghettos, in the lower side of heaven, you know, where no one will visit. You know, no Imam Ali Asasana will
never.
visit them. So we don't want to stay in that neighborhood. We would like to be in the neighborhood of Aima alayhi salam, inshallah. And the people who will be with Aima alayhi salam, they will be the true followers who don't love anyone but Allah subhanahu wa ta'ala, whose time is not spent for anyone but Allah subhanahu wa ta'ala, who do not do anything but for Allah subhanahu wa ta'ala. They don't live or breathe anything and for anyone but Allah subhanahu wa ta'ala. And these will be the people in that level, and we would like to be there, not in the ghettos of heaven. Inshallah that Allah subhanahu wa ta'ala will bless us. How does it feel in Jahannam? We described that already. In Jahannam, everything opposite of what I told you. Full stop. So everything I told you about Jannah, opposite, you can imagine it, and that would be in hell. So inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala bless us all. Let's all recite the dua of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and then there's maghrib time already. Bismillahirrahmanirrahim.